हरे कृष्णा। सुन रहे आप लोग? थोड़ा इधर आ जाए। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की अर्जुन अब अपने संबंधियों को देखते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। पिछले हफ्ते का जो श्लोक था जिसमें अब अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे स्वजन हैं और क्योंकि मैं इस प्रकार का योद्धा हूं तो इनका हनन तो मेरे हाथों होना ही। हत्वा स्वजनम आहवे, ये जिंदा तो नहीं रहेंगे क्योंकि युद्ध भूमि में यदि मुझे विजय प्राप्त करनी है तो इन्हें मारना होगा। और इस श्लोक में या आज जो हम 32 से लेकर 35 तक श्लोक लेंगे, इन श्लोकों में अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि यदि मुझे वो राज्य भी प्राप्त हो जाए इनको मारने के पश्चात तो किस काम का वो राज्य, क्या करूंगा उस राज्य को मैं लेकर। तो इसलिए वो कहते हैं किम नो राज्ये न गोविंद किम भोगैर्जीविते न वा येषामर्ते कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रास् तथैव च पितामह मातुला श्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्त्र राष्ट्रान्न का प्रीति स्याद् जनार्दन। इन श्लोकों में अर्जुन अब बोल रहे हैं कि हे गोविंद, किम नो राज्ये न गोविंदे किम भोगे जीविते न वा, कि ये राज्य लेकर और उस राज्य का भोग कर आप बताइए हे गोविंद क्या मैं सही में सुखी रह पाऊंगा। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने चर्चा की कि वो जो राजपद है वो राजपद मान सम्मान दिलाता है और उसके साथ साथ सुख सुविधा। तो विजयम राज्यम और सुखानि, यदि आपको याद है इन तीन शब्दों को हमने लिया था। तो मान सम्मान जब विजय प्राप्त होगा, विजय प्राप्त होने के पश्चात राज्य मिलेगा और राज्य का अर्थ है सारी सुख सुविधाएं सुखानि। परंतु अर्जुन ये सब कुछ नहीं देख रहे, उन्हें ये सब कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें केवल यही दिख रहा है कि मैं अपने स्वजन को मार रहा हूं बस। तो आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा श्लोकों के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, येषाम अर्थे राज्यम भोगा सुखानि च हन्तुम् इच्छामि घ्नतोपि गोविंद मधुसूदन और जनार्दन। भगवान को इन नामों से अर्जुन ने पुकारा है, बहुत ही ज्यादा अब विवश स्थिति है अर्जुन की, इसलिए भगवान को इन विविध नामों से इन श्लोकों में तीन बार अर्जुन पुकार रहे हैं। तो सबसे पहले हम यदि देखें, अर्जुन कहते हैं येषाम अर्थे। येषाम अर्थे का अर्थ क्या है कि युद्ध जो मैं कर रहा हूं विजय प्राप्त करने के हेतु, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या रह जाएगा जब ये लोग ही नहीं रहेंगे जीवित। अर्थात मैं युद्ध लड़ रहा हूं इनको दिखाने के लिए। अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि युद्ध में मैं विजय प्राप्त कर रहा हूं ताकि ये देखें, परंतु ये युद्ध ऐसा है कि जब तक मैं वो ट्रॉफी हाथ में लूंगा, जब तक मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, ये सब तो मरे हुए रहेंगे। तो फिर इनको कैसे मैं दिखा पाऊंगा कि मैं जीता इनके और अब मैं राज्य कर रहा हूं। और एक और अर्थ ये शाम अर्थे का है कि मैं जीत भी गया परंतु मुझे यदि वो सुख राज्य का भोगना है तो इनके साथ ही मैं भोग पाऊंगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसे कहते हैं विस्तारित इंद्रिय तृप्ति, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि यहां पर अर्जुन व्यक्तिगत रूप से स्वकेंद्रित इंद्रिय तृप्ति नहीं के बारे में सोच रहे, परंतु उस इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं कि जो थोड़ी विस्तारित है, अर्जुन से संबंधित ये सारे स्वजन। जैसे कि गजेंद्र की कथा में गजेंद्र अपने परिवार के साथ त्रिकुट पर्वत पर जाता है और वहां पर अपना पिकनिक के लिए, तो पिकनिक के लिए गजेंद्र निकला अपने परिवार के साथ, मिसेस गजेंद्र और उनके मास्टर गजेंद्र, मिस गजेंद्र, सब पूरे परिवार के साथ निकला। और भागवत में बताया गया है कि गजेंद्र बहुत गर्वित रहता अपने परिवार के साथ जब भी रहता। जब भी वो अकेला कहीं पर जाता तो इतना ज्यादा वो मान उठाकर नहीं जाता, परंतु जब अपने परिवार के साथ जाता तो बहुत गर्वित होकर कि मैं और मेरा परिवार। और हम जानते हैं कथा कि जब उस ग्राह ने, मगरमच्छ ने गजेंद्र का एक पैर पकड़ लिया, तो जिस परिवार के प्रति गजेंद्र इतना गर्वित रहता उसी परिवार की तरफ अब गजेंद्र देख रहा था। ऐसी आंखों से, आशा भरी आंखों से कि इतना सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए किया, तुम लोग क्या मुझे बचाओगे नहीं। तो श्लोक आता है देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असच्वपि तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। भागवत में बताया गया है कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, विस्तारित इंद्रिय तृप्ति, जिसके ऊपर एक भौतिकतावादी मनुष्य अपना सहारा बनाए हुए है कि ये जो मेरे सगे संबंधी हैं, ये सगे संबंधी मेरे काम आएंगे, आवश्यकता पड़ने पर ये मेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये गजेंद्र की कहानी में दिखाया जा रहा है कि कोई भी कुछ नहीं कर सका, वो सारे खड़े के खड़े देखते रह गए। इसलिए देह अपत्य कलत्र आदिशु, ये बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी का अर्थ है कि किसी का पति या किसी की पत्नी या बच्चे या माता पिता, यहां पर अर्जुन जो लिस्ट दिए हैं, मातुला, श्वासुरा, आचार्य, ये जितने सारे जो लंबा लिस्ट है सगे संबंधियों का, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते थे एट द टाइम ऑफ डेथ एवरी वन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। हम सबको अपने स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति की पूंजी पर आध्यात्मिक संसार मिलेगा। इसलिए कहा गया है आत्म सैन्य, कि यह मनुष्य समझता है जैसे गजेंद्र समझ रहा था कि यह मेरी आत्म सेना है, यह मेरी स्वयं की सेना है जो मेरी रक्षा करेगी। प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं, दे आर फैलिबल सोल्जर्स, कि हम जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करें वही जब धोखा दे दे तो उसे कहते हैं फैलिबल सोल्जर। और इसकी शुरुआत होती है हमारे स्वयं की देह से, जैसे हमारा देह, हमें कितना विश्वास है अपने स्वयं के देह के ऊपर कि ये जो मेरा हृदय है, ये जो मेरे हाथ हैं, जो मेरा मस्तिष्क है, जितने सारे अंग हैं हमारे शरीर के, ये सारे अंग ये मेरा सहारा है। और इन्हीं अंगों के वजह से मृत्यु होती है। यही हृदय यदि पूछा जाए कि हम लोग सब यहां पर बैठे हुए सांस ले रहे हैं किसके वजह से, हृदय के वजह से। ये हृदय चल रहा है ना सबका, ये हृदय, इसके वजह से सब कुछ हो रहा है हमारे शरीर में और हम सांस ले पा रहे हैं। अब कितनी बार हम सुनते हैं कि इसी हार्ट के वजह से लोगों की मृत्यु भी होती है, कि जिसके वजह से हम जी पा रहे हैं वही कारण बनता है हमारे मरने का भी। हम केवल ये एक अंग ले रहे हैं, हमारे शरीर में कितने सारे ऐसे अंग हैं और हर एक अंग के अंदर भौतिक प्रकृति ने ये शक्ति फिट कर दी है, हमारे जीने की भी और हमारे मरने का कारण की भी। देखिए एक और उदाहरण ये दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति घर बनाता है तो घर किस लिए बनाता है, ताकि घर के आश्रय में वो सुरक्षित रहे। परंतु भूकंप जब आए तो वही घर की छत मरने का कारण बनती है उस व्यक्ति की। ये उदाहरण हमने पहले भी दिया हुआ है, भुज में जब वो भूकंप आया था गुजरात में, तो एक घटना ऐसी हुई कि एक महिला दूसरे या तीसरे माले पर अचानक महसूस हुआ कि वो बिल्डिंग हिलने लगी, तो समझ गई वो महिला कि ये शायद भूकंप जैसा कुछ है, तो तुरंत वो अपने बिल्डिंग से नीचे बाहर आ गई। बाहर आ गई और उसने अपनी आंखों से देखा उसकी बिल्डिंग हिल रही और चारों तरफ बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, कोई बिल्डिंगों से नीचे कूद के मर रहे हैं, कोई बिल्डिंगों के अंदर धंस के मर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही थी कि कम से कम मैं बाहर खुले में तो आ गई। जैसे ही वो वैसा सोच रही थी पीछे से किसी बिल्डिंग का कांच का टुकड़ा आकर गले पर लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु। और वो जिस बिल्डिंग से उतरी थी वो बिल्डिंग हिली परंतु गिरी नहीं। अर्थ क्या है, यदि वो उस बिल्डिंग में रहती तो बच जाती। तो ये जो छत जिसका आश्रय कोई व्यक्ति लेता है वही छत कारण बन सकता है, या कोई भी कारण। जैसे आजकल जितने सारे हम उपाय खोज रहे हैं इंद्रिय भोग के, नए नए भौतिक प्रकृति भी नए नए तरीके निकाल रही है मरने के, मरने के भी नए नए तरीके आ रहे हैं। ये सारी जो अलग अलग बीमारियां और एक्सीडेंट और किस प्रकार से लोगों की नृशंस तरीके से मृत्यु होती है, ये पहले के जमाने में ये सब कुछ नहीं था ऐसा। तो अर्जुन जो कि अब कहते हैं कि येषाम अर्थे, ये लोग ही नहीं रहेंगे तो अर्थ क्या, इसे कहते हैं विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। अब ये विस्तारित इंद्रिय तृप्ति बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती है और इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो देह है वो देह की प्रधानता नहीं देखी जाती, देह इंद्रिय भोग की, स्वदेह इंद्रिय भोग की प्रधानता नहीं देखी जाती, परंतु दूसरे की देह की इंद्रिय भोग की प्रधानता होती है, परंतु उसमें सूक्ष्म आनंद मिलता है। इसलिए अर्जुन अपने स्वयं का ये जो स्वदेह केंद्रित सुख है इसके बारे में बिल्कुल नहीं चिंता कर रहे। अब राज्यम भोगा सुखानी च, अर्जुन कहते हैं श्लोक में, तो यदि इसे हम लें तो यह स्थूल स्तर पर है, स्वकेंद्रित इंद्रिय तृप्ति, अर्थात जो हमारे शरीर से संबंधित है। जैसे कि हम रोज खाते हैं तो रोज खाने से हमें तृप्ति मिलती है, चाहे कितना भी प्रेम हो माता को अपने पुत्र से, परंतु माता खुद भी खाती है और पुत्र को भी खिलाती है पुत्र पैदा होने के बाद। ऐसा नहीं कि पुत्र को खिला दिया तो माता भी अब तृप्त हो गई, या माता ने खा लिया तो पुत्र भी तृप्त हो गया, नहीं, दोनों हालांकि एक प्लेट में खाएं परंतु फिर भी दोनों को खाना पड़ता है, क्योंकि दोनों का देह है और देह में जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग है। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के लिए जो स्वकेंद्रित इंद्रिय तृप्ति है वो ये सब राज्यम भोगा सुखानी, ये अर्जुन बोल रहे हैं कि ये सब मेरे स्वकेंद्रित इंद्रिय हैं, परंतु मुझे ये स्वकेंद्रित इंद्रिया कोई आनंद नहीं देंगी जब तक ये लोग नहीं रहेंगे मेरे साथ। जैसे कि यही उदाहरण हम लें भोजन लेने का, तो अक्सर पूरे परिवार के साथ भोजन लेना आनंद में लोग मानते हैं ना, अकेले किधर कोने में बैठकर उसमें आनंद नहीं आता, इसलिए कहीं जाते भी हैं चलो किधर रेस्टोरेंट में एक साथ चलते हैं। एक उदाहरण राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में दे रहे थे कि कल्पना कीजिए कि ये स्वकेंद्रित इंद्रिय तृप्ति के जितने भी साधन हैं, हमारे पांच इंद्रियों के जितने भी विषय भोग उनके साधन हैं, वो सारे किसी व्यक्ति को उपलब्ध हैं, सारा धन सब कुछ उसके पास है, परंतु वो अकेला इस पृथ्वी पर जी रहा और कोई नहीं, क्या आनंद आएगा उसे। और उदाहरण दे रहे थे सेलफोन का कि आजकल इतना लोग वो जो सुविधा है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो मान लीजिए सारा सेलफोन उसके पास, क्या फायदा उसका, कि दूसरे के पास भी तो होना चाहिए ना, तभी तो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए जब पहली बार जब कोई व्यक्ति सेलफोन इस्तेमाल करना शुरू करता है या कोई भी फोन, तो उसे हर समय इस बात की आकांक्षा रहती है कि कितने लोग जानते हैं मेरे नंबर को और कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, उसमें उसे आनंद मिलता है, चाहे रॉन्ग नंबर क्यों ना हो। तो शुरुआत में जैसे ही जब फोन बचता है तो तुरंत अरे किसी ने तो कॉल किया, वो नेटवर्क सर्विस से हो सकता है वो रिकॉर्डेड मैसेज बोलना शुरू करे, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए नाना नाना से शुरू कर देते, तो कुछ भी कहीं से तो कुछ तो आया, आवाज आई। अर्थ क्या है कि कोई अकेला भोग नहीं कर सकता, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण वो अपना विस्तार करते हैं, वो अपने आप का विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, क्योंकि स्वकेंद्रित इंद्रिय तृप्ति में कोई आनंद नहीं है। इसलिए विस्तारित इंद्र तृप्ति, जब तक वो स्वकेंद्रित इंद्र तृप्ति के साथ न आए तब तक वो इंद्र तृप्ति का सर्किट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि स्वकेंद्रित इंद्र तृप्ति वो केवल जानवरी जो पशुवत हैं उन्हें केवल अपने ही देह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे पशुओं में यदि देखा जाए तो अपने इंद्रिय भोग के विषय में अक्सर अपने ही स्वयं के देह के विषय में सोचते रहते हैं। तो बहुत आवश्यक है ये समझना कि मनुष्य के इंद्रिय भोग की शैली किस प्रकार की होती है। ये दोनों मनुष्य के इंद्रिय भोग की शैली में होने चाहिए, स्वकेंद्रित और विस्तारित। ये जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि ये जो सूक्ष्म स्तर पर इंद्रिय भोग है ये मन के द्वारा वो इंद्रिय भोग की अनुभूति होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जब किसी के साथ बात करता है तो यदि कोई अच्छी बात करने वाला है व्यक्ति, तो उसे होता क्या है कि सूक्ष्म अनुभूति होती है आनंद की। हालांकि कानों में केवल शब्द ध्वनि जा रही है, परंतु जो कानों के पर्दे पर शब्द ध्वनि जा रही है वो मन जब तक उसे ठीक प्रकार से अनुवादित नहीं करता तब तक वो शब्द ध्वनि का कोई अर्थ नहीं। तो कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोले, परंतु यदि हमारा कोई संबंध नहीं उस व्यक्ति से, मन से, सूक्ष्म शरीर से, तब तक वो अच्छी बातें कोई इतनी अच्छी नहीं लगने वाली। जैसे कि एक स्थिति को यदि हम लें, एक माता अपने छोटे से पुत्र के साथ खेल रही और रेडियो में कोई अच्छा गाना भी बज रहा है जो उसके कानों के पर्दे पर पड़ रहा है। तो अब जो रेडियो में गाना बज रहा है वो जो भी गायक कलाकार होगा बहुत मधुर कंठ वाला होगा, परंतु और ये जो बच्चा बोल रहा है तोतली भाषा में, टूटी फूटी भाषा में कुछ बोलता होगा, मामा माता ऐसे। तो अब माता को कौन सी वाणी ज्यादा मधुर लगती है? क्यों? यदि कान के पर्दे को पूछा जाए, यदि कान के पर्दे को जीवित समझते हुए कान के पर्दे को पूछा जाए कि ज्यादा मधुर किसकी वाणी है, तो कान का पर्दा क्या बोलेगा? रेडियो। परंतु सूक्ष्म तरीके से वो जो संबंध स्थापित हुआ है माता का अपने पुत्र के साथ, और उसी ऐसा नहीं कि फिर किसी बगल वाले पड़ोसी के छोटे बच्चे को लेकर आए, वो तोतली भाषा, वो थोड़ा और भी अच्छी तोतली भाषा बोल सकता है, हो सकता है, परंतु नहीं, मेरा, अरे मेरा है। उसकी तोतली भाषा सबसे विशेष, से ज्यादा विशेष तोतली भाषा और किसी की पूरे संसार में नहीं हो सकती। सभी माता अपने पुत्र की इसी प्रकार से प्रशंसा करती है, करनी भी चाहिए, परंतु यह समझ लेना चाहिए कि जब तक ये दोनों का संबंध स्थापित नहीं होता मनुष्य पूर्ण रूपेण इंद्रिय भोग नहीं कर पाता। तो इसलिए ये उनकी शैली है। अब अर्जुन आगे कहते हैं, हंतुम इच्छामि ज्ञतोपि। इसका अर्थ क्या है कि हे कृष्ण, मैं यहां तक परित्याग करने के लिए तैयार हूं कि ये जो मेरे स्वजन, इनको मारने के बजाय यदि ये मुझे मार दे वो भी मेरे लिए स्वीकृत है। अब देखिए, यदि अर्जुन को पूछा जाए कि ठीक है फिर वो कैसे भोगेंगे तुम्हारे बिना, तुम बोल रहे हो कि उनके बिना तुम कैसे राज्य भोगोगे, तो तुम्हारे बिना वो कैसे भोगेंगे? तो तो अर्जुन कहता है जैसे भी वो भोगना चाहे, परंतु मैं यदि मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं। इसे कहते हैं त्याग, परंतु कैसा? विस्तारित स्वार्थ। भगवान ने इस त्याग की भी प्रशंसा नहीं की। सोचिए, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? अर्जुन, ऐसा नहीं कि अर्जुन सक्षम नहीं थे इनको मारने में, बता दिए पहले से, भविष्यवाणी कर दिए तो मरने वाले मेरे हाथ, हत्वा स्वजनम। तो अर्जुन के अंदर सारी क्षमता इनको मारने की, परंतु फिर भी कहते हैं कि इनके हाथों में यदि मारा भी जाऊं तो भी ये मेरी इच्छा, हंतुम इच्छामि घ्नतोऽपि। बहुत बड़ा त्याग। जैसे कि भागवत में कहा गया है कि जो अपने परिवार, समाज या देश, ये विशेष रूप से देश के बारे में, कि देश की भक्ति में बलिदान हो जाओ, है ना? तो इस प्रकार से हम जब सुनते हैं कि लोगों ने, हालांकि उनकी सराहना करनी चाहिए कि बहुत बड़ा इनका बलिदान त्याग हुआ है, परंतु वो फिर भी एक प्रकार का विस्तारित स्वार्थ है। क्यों मेरा भारत महान? क्योंकि मेरा है, उसमें मेरा आ रहा है ना। पहले 100 में से 99 भी बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं इस भारत की भूमि पर। तो फिर वो पाकिस्तान ने क्या गलती की है? पाकिस्तान ने क्या गलती की, ये भी पूछने की बात है। प्रभुपाद कहा करते थे कि अच्छी बात है देशभक्ति, परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल अपने देश 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 और देश के अलावा और कुछ नहीं, तो वो यदि वो रणभूमि में बंदूक लेकर पाकिस्तानियों को मार रहा है, और यदि वो पाकिस्तानियों को मार, सोचता तो है पाकिस्तानियों के विषय में कि ये इनको मारना है, मेरे देश को जिताना है, तो उनको सोचते हुए यदि ये मर जाए, तो भगवत गीता के अनुसार किसे सोचते हुए मरा है? तो कहां पैदा होगा वो? हाँ, पासी में, बॉर्डर के पास में, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आत्मा को वहां जाने के लिए। तो फिर वो अब अपना बलिदान किया, पाकिस्तानियों के विषय में सोचते हुए मरा, तो वहां पैदा हुआ। अब वहां पैदा हुआ तो फिर वहां का जनगण मन गाना शुरू किया, तो अब वहां पर क्या ट्रेनिंग मिली कि ये अब बंदूक पकड़ो, अब इनको मारो। तो अब इनको मारते हुए फिर से भारतीय को सोचते हुए मरा, फिर से इधर, यहां से यहां, फुटबॉल की तरह से। एक इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे नीचा दिखा रहे हैं, नहीं, परंतु वो देश की जो भक्ति है वो सर्वोच्च नहीं है। इसे यहां पर अर्जुन भी इस प्रकार की निस्वार्थ भावना दिखा रहे हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, भगवान कहते हैं कि ये मूर्ख के तुम्हारे वचन है। सोचिए, अर्जुन को बोल रहे हैं इस प्रकार से। एक क्रांतिकारी, उनको जब फांसी चढ़ाई जा रही थी, किस लिए? देश के स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, तो उनको फांसी चढ़ाई जा रही थी, तो फांसी के तख्ते पर अब चढ़ने ही वाले थे ये क्रांतिकारी। तो इनको पूछा गया कि अंतिम इच्छा क्या है, पूछते हैं अंतिम इच्छा। तो अंतिम इच्छा पूछी गई, तब देखिए इन्होंने कहा कि मुझे केवल एक ही बात का रंज है कि केवल एक ही शरीर है मेरा अपने देश के लिए बलिदान करने हैं। I only regret that I have only this one life to sacrifice for my country. तो मेरी इच्छा है कि हर जन्म में मैं अपने देश के लिए बलिदान करूं। तो बहुत अच्छा भाव है। तो ये जो बलिदान का भाव है ये अच्छा है। आजकल तो लोग खुद के लिए पूरे देश को बलिदान करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि दे शेक योर हैंड्स बिफोर योर कॉन्फिडेंस, कि आपके विश्वास को हिलाने से पहले वो आपसे हाथ मिलाते हैं। तो यहां पर अब मुद्दा यह है कि अर्जुन ये उस भाव में गए हैं कि जिसमें परित्याग, बलिदान, ये त्याग, निस्वार्थ, हालांकि तथाकथित है वो कृष्ण के अनुसार, वो है स्वार्थी परंतु दिखने में निस्वार्थ दिख रहा है। जैसे भारत के एक बड़े नेता, वो जब कम्युनिस्ट का राज्य चल रहा था रशिया में, तो वहां गए, तो वहां पर उनके जो कम्युनिस्ट के प्रमुख, कम्युनिज्म आप जानते हैं कि सब एक, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब एक, क्लासलेस सोसाइटी भी कहते हैं उसे। तो वो दिखा रहे थे कि देखो हम सब मिल बांट कर खाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के पास इतना धन ज्यादा है, अगर इसके पास ज्यादा है तो उसे बांटना होगा सबके पास। तो ये जो नेता भारत के गए, बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए। तो वो कुछ उदाहरण देखना चाहते थे कि आप कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो ये ऐसे ही रास्ते में चलते हुए एक कम्युनिस्ट नागरिक को पकड़ा रशिया के और पूछा कि तुम्हारे पास यदि दो गाय हैं तो तुम एक अपने पड़ोसी को दोगे कि नहीं? उसे अवश्य दूंगा। देखा, यदि तुम्हारे पास दो घर है तो एक घर तुम अपने पड़ोसी को दोगे कि नहीं? तो अवश्य दूंगा। यदि तुम्हारे पास दो खेत है तो एक खेत तुम अपने पड़ोसी को दोगे कि नहीं? अवश्य दूंगा। दो पत्नियां हैं, ये नहीं पूछा, परंतु अंत में पूछा कि यदि तुम्हारे पास दो कार है तो एक कार तुम पड़ोसी को दोगे कि नहीं? मतलब बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ये भारतीय अब ये रशियन मिनिस्टर की तरफ देखने लगे, अब क्या हुआ? बोले क्यों नहीं दोगे? बोले क्योंकि है मेरे पास। ये बाकी सारी चीजें नहीं थी तो इसलिए बोलने में क्या जाता है। गाड़ियां दो हैं, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो जो भी इसका अर्थ क्या है कि तात्पर्य ये है कि जो भी ये तथाकथित जो त्याग बलिदान जो है ये कुछ हद तक वो दिखता है, परंतु एक हद के बाद फिर वो जो स्वार्थ है वो आ ही जाता है। जब तक शुद्ध अन्य अभिलाषित शून्यम, वो प्रेमा भक्ति जब तक नहीं आती किसी जीव के हृदय में, तब तक जो वास्तविक निस्वार्थ भावना है वो पैदा नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर यदि कोई भगवत गीता का सिद्धांत नहीं समझे तो अर्जुन का जो सिद्धांत है बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत मानेगा, और है भी, इसमें कोई शंका नहीं, बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है परंतु सर्वोच्च कोटि का नहीं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके आगे अब जो अर्जुन विविध नाम पुकार रहे हैं भगवान के, तीन नाम से भगवान को पुकारा है, गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन। अब हालांकि बहुत बार हमने सुना कि भगवान का नाम गोविंद क्यों है, परंतु इसकी व्याख्या ठीक से आज भी हम देखेंगे। परंतु तीन भगवान के नाम उल्लेख अर्जुन कर रहे हैं, अर्थात अर्जुन की विवशता देखिए कि ऐसी विवश अवस्था में अर्जुन आ रहे हैं, विषाद बढ़ते जा रहा है, उसका डिग्री बढ़ते जा रहा है। इसलिए भगवान को केवल एक ही नाम से या केवल भगवान करके नहीं पुकारा, बल्कि तीन तीन नाम से, और वो भी उसके पीछे कारण है। तो गोविंद नाम की व्याख्या, गायों को आनंद देने वाले हैं जो। गो का एक अर्थ है गाय, जो गाय को आनंद दे वो है गोविंद। बहुत बार लोगों को यह प्रश्न उठता है कि सभी जानवरों में से भगवान ने ये गाय क्यों चुनी, क्यों गाय चुनी, और भी कुछ जानवर चुन सकते थे, भैंस क्यों नहीं, वो भी तो दूध देती, बकरी, ऊंट, ऊंट अच्छा रहता थोड़ा ऊपर बैठकर, ये गाय क्यों चुनी भगवान। गाय का महत्व इतना बताया गया है शास्त्रों में, गो सेवा का विशेष रूप से। और देखिए कि इतनी दुर्भाग्य की बात है कि इस धर्म भूमि में जिस गाय की पूजा होनी चाहिए, रोज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गायों की हत्या हो रही है। बहुत दुख की बात है। एक वृंदावन के बाबा जी हैं, उनका एक बहुत विशेष और विचित्र तरीका है गो सेवा करने का। वो क्या करते हैं, ये सारे जो कसाई कहानी जहां पर गायों को मारा जाता है, तो ये बंदूक लेकर जाते और वो पूरे कसाई खाने में जितनी भी गायें हैं उन सबको रिलीज करते हैं पहले, और उन सब के लिए ये अपने एक गौशाला बनाए हैं। तो वो गौशाला में केवल ये सारे अलग अलग जहां पर भी आसपास के कसाई खाने हैं वहां पे जितनी भी गाय इकट्ठी हुई मरने के लिए या वो लोग मारने के लिए इकट्ठी किए, उन सब को वहां से छुड़वाकर ये अपनी गौशाला में बांध के रखते और उनके ऊपर ये सारे कसाई खाने केस किए हैं, कोर्ट केस, इतने सारे कोर्ट केस हैं बाबा जी के ऊपर। परंतु सरकार भी जानती है कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो बंबई के एक भक्त इनको पूछे कि हम आपके इस गो सेवा गौशाला के लिए कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो उनका फिगर 1.5 लाख से नीचे यदि है तो आप और किधर दीजिए, यहां पे सैकड़ों गाय हैं। बोले कि डोनेशन देना है तो 1.5 लाख के ऊपर शुरू कीजिए। तो आजकल इस प्रकार की, ये शास्त्र में ऐसी कोई गो सेवा लिखी नहीं, परंतु कलयुग में इस प्रकार की गो सेवा भी करनी पड़ रही है, और बहुत अच्छी बात है। कम से कम भारत में तो, मतलब मेरे ख्याल से आगे चलकर इस हद तक बात आ जाएगी कि फिर वो गोली चलानी पड़ेगी इनके ऊपर, अभी तक तो केवल बंदूक दिखाए, फिर वो बंदूक भी चलाना होगा। देखिए गाय के विषय में भगवान श्री कृष्ण इतने ज्यादा वो गाय को प्रिय मानते हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक संसार का नाम रखा है गाय के पीछे। हम जब अपने घर का नाम रखने जाते हैं तो कितना सोचते हैं, जो मेरा बंगला है उसका क्या नाम होना चाहिए, क्योंकि बंगला मेरा न्यारा, नाम भी न्यारा, तो मेरा सब कुछ न्यारा होना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा बंगला बांधे तो उसका नाम भी एकदम सोच समझ कर, डिस्कस कर कर अपना बंगले का नाम रखता है। तो सोचिए जो सर्वोच्च लोक है, भगवान का निज धाम, तो भगवान ने कितना सोचा होगा कि इसका क्या नाम होना चाहिए, क्योंकि सारे बद्ध जीव वहां पर मुक्त होकर वहां पर जाने वाले हैं और मुक्त जीव पहले से वहां पर हैं। तो सोचिए भगवान के निज धाम का नाम क्या होना चाहिए, गोलोक। गाय के बारे में सोचा भगवान ने नाम रखते हुए, सोचिए। इतना प्रेम भगवान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं अलग अलग रसों में, हर एक रस में गाय के साथ तो लीला है ही भगवान की। चाहे माधुरी रस में लो, दास्य रस में लो, साख्य रस में लो, वात्सल्य रस में, तो ये गाय का सौभाग्य ऐसा है कि हर रस में भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका लीला हुआ। मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे गायों के विषय में कि कोई साधारण प्राणी नहीं है गाय। जब पहले के जमाने में यह देखा जाता था कि हर एक घर में एक गाय होती थी, गांवों में, मुझे भी याद है हमारे गांव में अभी भी गाय है, और घर में यदि कोई सदस्य बीमार होता तो गाय को पता लगता कि सदस्य बीमार है, और वो गाय जब उस दिन चरने जाती तो जो जड़ी बूटी उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए आवश्यक है उस जड़ी बूटी को चरती, उसे खाती, और उस जड़ी बूटी को खाई हुई गाय का दूध जब इस बीमार सदस्य को पिलाया जाता उसकी बीमारी दूर होती। तो गाय वो एक सदस्य उस परिवार की मानी जाती। परंतु आजकल तो इतने निशंस तरीके से, विशेष रूप से गायों को पाश्चात्य देश में मारा जाता है कि हम मंदिर में उसकी चर्चा तक नहीं कर सकते, कि केवल उसकी चर्चा करने से हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। परंतु भगवान गायों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा किए कि पूतना वध जब हुआ या पूतना का उद्धार हुआ तो भगवान 6 दिन के थे और सारे गोपियों ने गायों का प्रोडक्ट्स भगवान को लगाया, गोमूत्र, गोरज, गोबर, इन सब से भगवान के पूरे शरीर की रक्षा की। तब भगवान ने प्रण लिया कि क्योंकि गायों ने अपने पदार्थ दिए हैं मेरी रक्षा के लिए, इसलिए आज से मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं सदैव इनकी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान का नाम हुआ गोपाल उस दिन से। तो गायों को आनंद देने वाले, तो यहां पर अर्जुन भगवान को गोविंद क्यों बुला रहे हैं कि आप गायों को आनंद देने वाले ब्रज में आपने कभी हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए? इतना मधुर आपकी लीलाएं हुई, मुझे क्यों ऐसे मार काट में लगा रहे? मुझे भी कोई अच्छा ऐसा ही दे दो, आपकी कोई गौशाला में काम, वृंदावन की किसी गौशाला में, मैं भी ग्वाले का काम करता हूं। तो गोविंद करके पुकारे, आप गोविंद हैं, सारी गायें आपके ही अंडर हैं, मैं ठीक है दूध बनाकर मैं भी मक्खन निकालकर खिलाऊंगा आपको। दूसरा अर्थ है इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, आपका नाम गोविंद है, गो का एक और अर्थ है इंद्रियां, तो फिर ये मेरी इंद्रियों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? तो मेरी इंद्रियों को भी आप खुश करो, संतुष्ट करो। हालांकि गोविंद का अर्थ है कि जब हम उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करें तो अपने आप हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, परंतु उल्टा यहां पर अर्जुन मांग रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को आप संतुष्ट कीजिए। सरस्वती को आनंद देने वाले ये हैं गोविंद। इसलिए श्रील प्रभुपाद और जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि माता सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठकर उनके जो आराध्य देव हैं श्री कृष्ण का गुणगान वो लोग कर सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये लोग कैसे समझेंगे मेरी भाषा, और बहुत मुश्किल है वहां पाश्चात्य देश में भारतीय जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें 2 बार पूछना पड़ता है क्या क्या बोला आप, और वो लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं हमें 2-3 बार पूछना पड़ता है, उनके जैसे भारतीय अंग्रेजी भी थोड़ी अलग है, वहां पे तो प्रभुपाद ने पूरे अंग्रेजी में प्रचार किया, तो भारतीय अंग्रेजी भी अभी ये जैसे लंदन में या अमेरिका में भी देखिए बहुत से गुजराती ज्यादा है वहां पर। तो कई बार यदि अभी हम जो भी जगह से हों या गुजरात से हों या पंजाब से हो, हम एक हमारा स्वयं का स्टाइल रहता है बोलने का। जैसे प्रभुपाद जब बोलते थे तो उनका बंगाली पूरा हैवी एक्सेंट आता था। प्रभुपाद बोलते थे द बार्ड्स इन अमेरिका आर स्वीट। अभी बर्ड्स बोल रहे थे परंतु वो उस हिसाब से बोले बार्ड्स, तो अभी सभी लोग पूछ क्या बोलते हैं। जैसे कई बार यदि गुजराती वो अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसे वाक्य सुनने में आते हैं, द स्नेक्स आर वेरी गुड इन द होल, आई एम गोइंग टू द होल टू ईट द स्नेक्स। समझे कि हॉल में स्नैक्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अब क्योंकि वो बोलने की एक शैली होती है तो उस हिसाब से वो शब्द निकलते हैं, द स्नेक्स इन द होल आर वेरी टेस्टी। तो आप लोग डर जाओगे कि ये कोई जो भी अमृता बेन स्मिता बेन जो भी बेन है वो सांप खाने जाती है, वो भी होल के अंदर। तो प्रभुपाद यही चिंता कर रहे थे कि मैं यहां जाके इनको समझ में आएगी मेरी भाषा। तो माता सरस्वती बहुत से वहां पे हिप्पी पहले से वो तो नशे में धुत, उनको हिला हिला के क्या वो तो सुनेंगे प्रवचन। हमको तकलीफ होती है, सब नहा धो के तिलक धारण करके बैठते हैं तब तकलीफ होती, तो वो लोग सब अब सब नशा अंतर डाले हुए और सातवें आसमान में उनका सब कुछ चेतना और वहां बैठे, उनको क्या समझ में आया। परंतु माता सरस्वती की कृपा और उनकी जिह्वा पर माता सरस्वती बैठते हुए जब प्रभुपाद प्रचार करना शुरू किए, मुझे ये प्रवचन बहुत श्रील प्रभुपाद का एक प्रभावित करता है। ये 1966 का प्रवचन है और प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पर बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पर, सो देयर आर द पंचतत्वस, और पंचतत्व के बारे में कि पंचतत्व कौन कौन है, श्रीवास कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है। तो मैं कल्पना कर रहा था कि ऑडियंस कौन होगा प्रभुपाद के सामने, कि कौन सा तत्व कौन सा पंच क्या समझ में आएगा। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द चैतन्य चरितामृत स्पीक्स अबाउट पंच तत्व। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये इतना बड़ा वाक्य सुन के ही सब ठार हो जाएंगे, क्योंकि सरस्वती की कृपा। तो इसलिए भगवान सरस्वती को आनंद देने वाले हैं, इसलिए जो भगवान को आनंद देना के प्रयास करता है तो माता सरस्वती। इसलिए ये सारे जो प्रभुपाद के शिष्य उस समय के हुए, प्रभुपाद इनको कहते जाओ अब लंदन में सेंटर खोलो और इनको कहते कि प्रवचन दो, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि तुरंत प्रवचन कैसे दिया जाए। हृदयानंद महाराज, आप लोग यदि इनके बारे में सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान हैं हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के, बहुत पीएचडी वगैरह किया है उन्होंने। शुरू में जब उनको कहा गया आप आज का भागवतम क्लास दो, तो हृदयानंद महाराज ने पहला भागवतम क्लास कैसे दिया, उन्होंने प्रभुपाद का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर वॉकमैन में, उस समय तो वॉकमैन या जो भी कैसेट प्लेयर, उसे अपने ऐसी चद्दर डाल ली, कानों को कवर कर लिया, इधर ईयरफोन डाल दिया और अपनी चद्दर के नीचे वो वॉकमैन को छिपा दी, व्यासासन पे ऐसे बैठे और फिर प्ले बटन दबाते तो तो प्रभुपाद का जो लेक्चर एज इट इज, एक एक लाइन, तो उनका एक हाथ पॉज बटन पर, एक हाथ प्ले बटन पर, तो प्ले बटन दबाते, फिर आंख बंद कर बोलते, सो कृष्णा सेज इन द भगवत गीता, फिर सुनते प्रभुपाद क्या बोलते, दैट वी शुड ऑल सरेंडर कंप्लीटली, वी शुड ऑल सरेंडर कंप्लीटली। तो सबको, सब लोग ऑडियंस भी देख रहे थे आंख बंद कर कर, क्या बहुत बहुत ज्यादा गंभीर और ध्यानस्थ लेक्चर है, इतना सोच विचार के एक एक शब्द, उनको लग रहा था कि एक एक शब्द सोच विचार कर ये बोल रहे हैं। और अब यदि आप सुनो तो उनके ऐसे ऐसे सेमिनार हैं, ऐसे ऐसे लेक्चर वो देते हैं, ये सब कृपा किनकी है, सरस्वती। और वो कृपा अपनी बरसाती हैं जब वो देखती हैं कि ये व्यक्ति मेरे आराध्य देव को प्रसन्न कर रहा है। तो ये इनके नाम की एक व्याख्या है, पृथ्वी को आनंद देने वाले। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका नाम है गोविंद, आप पृथ्वी को आनंद देने वाले हो, तो ये इसी पृथ्वी पर इतना खून खराबा मुझसे क्यों करा रहे, ये पृथ्वी को क्या आनंद मिलेगा, इतना खून बहेगा, कितने 64 करोड़ योद्धाओं का खून बहेगा इस पृथ्वी पर, क्या उन्हें आनंद मिलेगा। तो अर्जुन संकेत दे रहे हैं भगवान को कि आपके नाम की जो महिमा है, कम से कम मुझे उसका तो पालन करने दो, गोविंद नाम। मधुसूदन, सबसे पहले मधु नामक असुर का वध भगवान ने किया, इसलिए उन्हें नाम मिला मधुसूदन। ये कथा आती है, गर्भोदक्षाई विष्णु के कानों से ये दो असुर पैदा हुए, मधु और कैतब। और ये उस समय पैदा हुए जब ब्रह्मा जी ध्यान में लगे हुए थे भगवान के, और भगवान दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए थे। तो सृष्टि की रचना नहीं हुई है, चारों तरफ केवल जल ही जल है, और गर्भोदक्षाई विष्णु इनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल के पुष्प के ऊपर। और ये दो असुर मधु और कैटब, ये पैदा होते ही इन्होंने उत्पात शुरू कर दिया और ब्रह्मा जी का ध्यान भंग कर लिया, और जो भी विद्या ब्रह्मा जी को मिली वो चुरा ली इन्होंने, शास्त्र ज्ञान। अब आप लोग पूछेंगे कि ये शास्त्र ज्ञान कैसे कोई चुरा सकता है, क्योंकि उस समय शास्त्र लिखित नहीं थे। जैसे अभी यदि आपको शास्त्र का अध्ययन करना है तो किताब लेकर पढ़ना होता है ना, ये कलयुग में, पिछले युगों में कोई किताब वगैरह नहीं हुआ करती थी, यहां तक कि द्वापर युग में भी कोई शास्त्र लिखित नहीं थे। सोचिए कि उनकी बुद्धि द्वापर युग में भी, सोचिए सत्ययुग में तो क्या बुद्धि हुई होगी लोगों की। जैसे कि इस मुद्दे पर हमारे आचार्य बताते हैं कि लोग कहते हैं कि कलयुग में हम बहुत एडवांस्ड हैं। कैसे एडवांस्ड है, हमें लिखना पढ़ना आता है। तो जो पिछले युगों के जो लोग हैं उनके अनुसार ये दुर्गति है हमारी, क्योंकि उनके अनुसार लिखना पढ़ना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि वो जब गुरुकुल में गुरुजी जब प्रवचन दे रहे हैं तो अपने आप ऑटो सेव, जो कंप्यूटर में होता है, अपने आप सेव, और जो भी कुछ सुना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, वाक्य सब रजिस्टर स्मृति में नित्य काल तक। और बिल्कुल कोई कुछ ऐसा नहीं कि भूल गए। अब हमें यदि पूछा जाए कि पिछले बुधवार को कौन सा शास्त्र हमने अध्ययन किया था, वहां से कई बार शुरू करना पड़ता है, पिछले हफ्ते बुधवार था कि नहीं। तो हमारी स्थिति कई बार वो हो जाती है। तो वो जब देखते हैं कि लिखना पढ़ना पड़ता है, तो दुर्गति है हमारी, हमें इस पे बहुत गर्व होता है ना, 100% लिटरेसी हमारे इस राज्य में है या पूरे देश में, तो ये शास्त्र चुराए कैसे जब कुछ है ही नहीं सामने, तो कैसे चुराए ब्रह्मा जी से? तो देखिए मधु और कैतब, इनके अंदर ऐसी शक्ति कि ब्रह्मा जी के बुद्धि में जो रजिस्टर्ड शास्त्र है उसको बुद्धि से चुरा लिए। सोचिए, इसका अर्थ है ये कहना कि हमारे स्मृति में जो कुछ अभी है, मानो कि हमारी स्मृति में बहुत कुछ मेमोरी, बहुत कुछ स्टोर्ड है कि हम गाड़ी चलाना जानते हैं, तैरना जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, बोलना जानते हैं, गाना जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं हम सब, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सब कुछ यहां पर स्टोर्ड है, कैसे कुछ करना है। मान लो कोई यहां से फाइल्स चुरा ले, ये संभव है? तो हम सुबह उठे भूल ही गए नाम क्या है हमारा, तो उठते ही हम पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो ये संभव नहीं। परंतु देखिए इनकी शक्ति ऐसी मधु और कहता, वो भी ब्रह्मा जी की स्मृति से शास्त्र चुरा लिया, तो भगवान को फिर कुछ करना पड़ा। तो भगवान अवतरित हुए और भगवान ने मधु और कैतब को अपना तेज दिखाया। इतने प्रभावित हुए मधु और कैतब भगवान का तेज देखकर कि मधु और कैतब भगवान से कहे मांगो कुछ वरदान। देखिए इनकी हिम्मत भी देखिए, भगवान को बोलते मांगो वरदान मांगो, बहुत सुंदर दिख रहे हो आप। तो भगवान ने अपना तेज इसलिए दिखाया ताकि मधु और कैतब ये इस प्रकार का प्रस्ताव रखे। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं वरदान मांगता हूं कि मेरे हाथों तुम दोनों मरो। हेलो, अब वो मधु और कैतब भी ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिए वरदान मांगो और ये इस प्रकार का वरदान मांगा तो मधु और कैतब फिर गए जाओ जाओ हम नहीं देते, वो भी स्टैंडर्ड के असुर थे। तो एक बार बोल दिया प्राण जाए वचन न जाए, तो वचन दे दिया तो ठीक है, परंतु शर्त एक है कि उस जगह पर ही हम मरेंगे आपके हाथों जहां कोई जल ना हो, क्योंकि उन्होंने देखा सब जगह जल ही जल है। तो भगवान, तो खैर भगवान को कौन हरा सकता है, तो भगवान ने कहा कि ठीक है ये शर्त आपकी मंजूर। तो दोनों के सरों को अपने जंघा पर रखा और वहां पर मारा ये इनको मधु को, तो इसलिए फिर भगवान का नाम उनको मिला मधुसूदन। और उनकी मेधा, उनके मेध से फिर पृथ्वी की रचना की, इसलिए पृथ्वी का एक और नाम है मेदिनी। तो अर्जुन भगवान को मधुसूदन क्यों पुकार रहे हैं? आपने असुर का वध किया इसलिए आपको नाम मिला है मधुसूदन, आपने आपके गुरु का वध नहीं किया, आपका कोई ऐसा नाम नहीं सांदीपनि सूदन, तो मुझे क्यों फिर अपने गुरु को मारने पे लगा रहे? हालांकि दुर्योधन इत्यादि सारे असुर की ही श्रेणी में, परंतु अर्जुन दुर्योधन को देखकर इतने ज्यादा प्रभावित नहीं, परंतु भीष्म द्रोण कृपा इनको देखकर। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने कभी आपके गुरुजनों को नहीं मारा, आपको नाम मिला है असुरों का वध करने के पीछे, तो मुझे क्यों अपने गुरुजनों को मारने पर लगा रहे? मधुसूदन की व्याख्या की गई है कि दूध या दूध से बने पदार्थ जिनके प्रिय हैं। अब भगवान को गाय प्रिय है तो दूध तो प्रिय होगा। भागवत में भी वर्णन है कि भगवान बचपन से ही गायों का दूध और दूध से बने पदार्थ खाने में कितनी रुचि रखते थे, यहां तक कि चोरी किया करते थे भगवान, जाकर गोपियों के घर में मटका फोड़ कर, हाइट भी नहीं पहुंच भी नहीं पाते, परंतु फिर भी छींके पे मटके में जो भी दही या मक्खन उसे फोड़कर वो मक्खन लेकर भगवान स्वयं खाते, बलराम जी को खिलाते, सारे ग्वालों को खिलाते और फिर वो हो गए खाकर तो बंदरों को खिलाते और सब कुछ खा के हो गए, फिर बाद में उन गोपियों को कहते बेकार बंदर भी नहीं खाते तुम्हारे साथ माखन। तो भगवान का आदान प्रदान होता अपने सखाओं के साथ खेलते वो मक्खन एक दूसरे पर फेंककर। सोचिए क्या ऐश्वर्य भगवान का कि मक्खन एक दूसरे पर फेंककर, आजकल तो होली में केमिकल फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, परंतु भगवान मक्खन एक दूसरे के ऊपर फेंककर इस प्रकार से, ऐसा उनका ऐश्वर्य दूध और दूध से बने पदार्थ। तो हालांकि कई समाज ऐसे हैं जैसे चीन में दूध एक उनकी जाति है चीन में, उस जाति में कोई यदि दूध पी ले तो उसके साथ कोई बैठता नहीं, उनके अनुसार वो अशुद्ध हो गया दूध पिया है, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि जैसे गाय का गोबर है वैसे ही गाय का दूध भी वैसे ही वो विष्ठा है गाय की, यदि वो ये आके देखे तो गोबर की भी पूजा होती तो फिर क्या बोलेंगे वो, वो दूध को अशुद्ध मानते हैं। और अफ्रीका में कई ऐसी जाति हैं जो कहते हैं कि यदि गाय का दूध उबाल ले तो वो गाय मर जाती है, ये सब अलग प्रकार की धारणाएं लोगों के अंदर, तो इसलिए गाय का दूध नहीं पीते, दूध के कोई पदार्थ नहीं। अमेरिका और यहां पर तो खैर कई लोग किसी और कारण के वजह से दूध और दूध के पदार्थ नहीं लेते, वीगन उनको कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत क्रूरता से गाय का दूध निकाला जाता है। परंतु गाय का दूध, लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि वो तो बछड़े के लिए है तो हम मनुष्य क्यों पिए उसे, परंतु गाय के जो स्तन हैं वो चार हैं, तो दो बछड़े के लिए होते हैं और दो मनुष्यों के लिए होते हैं, प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है गाय को। और यदि वो सारा दूध यदि बछड़ा पी ले तो बछड़ा मर जाए, इसलिए बछड़े को रोकना पड़ता है और जो बचा हुआ दूध फिर वो मनुष्यों के लिए। परंतु आजकल लोग वो दूध भी पीना पसंद नहीं करते, उसमें भी फिर पत्ती डालो ये डालो चाय बनाओ उसको। एक बार एक प्रोग्राम के लिए हम जा रहे थे तो टैक्सी में लिखा हुआ था ड्राइवर की जिंदगी एक्सीलेटर क्लच और ब्रेक, मालिक की जिंदगी ब्रेड बटर और केक। तो वो उसको मालिक की जिंदगी कहते, कम से कम उसमें बटर तो है बीच में मक्खन तो है। तो ये देखिए भगवान को एक नाम मिला है कि वो दूध का पदार्थ पसंद करते हैं, दूध पसंद करते हैं। और दूध के विषय में प्रभुपाद भी बहुत कुछ कहे हैं कि गाय का दूध विशेष रूप से पीने से जो हमारी आध्यात्मिक टिश्यूज हैं ब्रेन के वो उनको पोषण मिलता है और इसलिए समझ में जल्दी आएगा। तो यदि हमें भगवद गीता ठीक से समझनी है तो गाय का दूध पीकर, परंतु शुद्ध दूध, आजकल उसमें भी अलग अलग प्रकार की मिलावटें आती हैं, केवल जल से तृप्त हो जाने वाले भगवान। ये कथा है चैतन्य महाप्रभु जब श्रीधर कोलवेच इनके घर पहुंचते नृत्य करते हुए, तो भगवान श्रीधर कोलवेच बहुत ही निर्धन, इतने निर्धन कि श्रीधर कोलवेच का जो झोपड़ा वो भी ठीक से कवर नहीं, उसमें भी सब जगह पर टूटा फूटा उनका झोपड़ा, और श्रीधर कोलवेच को पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, कपड़े भी सारे सब पैच लगा हुआ सब जगह पर फटे हुए, कुछ नहीं श्रीधर कोलवेच के पास, केवल बनाना अपना जो केला होता है केला के पत्ते और ये सब बेचते। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए पहुंचते हैं और श्रीधर एक ही उनका वहां पर अभिप्राय रहता है जाने का कि वहां पर श्रीधर कोलवेज के झोपड़े के बाहर श्रीधर कोलवेज का एक लोहे का पात्र जिससे श्रीधर कोलवेज पानी पिया करते, तो जूठा पड़ा ऐसा, उसमें जंग भी लगा हुआ, और ऐसा नहीं कि उसमें बिस्लेरी का पानी या फिल्टर पानी, अशुद्ध पानी। उस पानी को पीने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलवेज के झोपड़े पर पहुंचे, और श्रीधर कोलवेज जब देखा, सब भक्तों ने भी देखा, तो सब उनको थोड़ा हृदय को कष्ट भी पहुंचा कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिखने में भी इतने सुंदर, और वो श्रीधर कोलवेज के इस जंग लगे हुए लोहे के पात्र से उस अशुद्ध जल, परंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुसार उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा शुद्ध जल और कहीं मैंने नहीं पिया, प्रेम। तो इसलिए उनका एक ये नाम है मधुसूदन। अब अंतिम नाम जनार्दन, भगवान को पुकारा है। जनार्दन का अर्थ है जन अर्दन, जो जन का पालन करते हैं। तो जन साधारण के जो पालन करता है वो है श्री जनार्दन। असुरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, क्यों असुरों को पीड़ा पहुंचाते हैं जनार्दन? क्योंकि ये असुर जिस हद तक असुर भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उस हद तक भगवान जनार्दन के रूप में इनको पीड़ा पहुंचाते हैं। जैसे दुर्योधन जानता था कि भगवान श्री कृष्ण को यदि मैं घूस खिलाऊंगा तो कुछ मेरी भी बात बन जाएगी। तो जब भगवान हस्तिनापुर आ रहे थे, तो दुर्योधन ने भगवान उपलव्य नगर से हस्तिनापुर आए, तो रास्ते में इतना सुंदर वेलकम रखा, स्वागत रखा भगवान का, तो भगवान जान गए ये दुर्योधन ने सब कुछ किया। तो भगवान जंगल के रास्ते से आए और दुर्योधन को बहुत क्रोध आया, और फिर 56 भोग बनाकर भगवान के लिए रखा था। भगवान ने कहा तुम खाओ, और भगवान गए विदुर के घर खाने। तो यहां पर भगवान दिखा रहे थे कि दुर्योधन तुमने इतनी पीड़ा दी है पांडवों को, इसलिए मैं शुरू करता हूं तुम्हें पहले पीड़ा देना और फिर मारना। हिरण्यकश्यपु को भी भगवान श्री नरसिंह देव ने तुरंत नहीं मारा, क्योंकि उसने प्रहलाद महाराज को इतनी पीड़ा दी थी, तो पहले पीड़ा दी और फिर मारा। इसलिए जनार्दन का यह भी नाम है असुरों का वध करने वाले, परंतु पहले जितनी आवश्यक उनको पीड़ा देनी है वो पीड़ा देकर उनका वध करने वाले। और इतना ही नहीं, असुरों की संपूर्ण जाति का वध करने वाले भगवान। जैसे हिरण्यकश्यपु का वध होने के पश्चात हिरण्यकश्यपु के जितने सारे संबंधी असुर, वो सारी टोली आई भगवान से युद्ध करने के लिए, और फिर भगवान ने पूरी जाति को खत्म किया। और इसलिए भगवान कुरुक्षेत्र का ये युद्ध भी रचे इसलिए ताकि ये सारे पूरे पृथ्वी के जितने सारे राक्षसी जाति के हैं एक साथ आए, तो भगवान को सब जगह जाना न पड़े। जैसे प्रभु श्री राम की लीला में भी प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा का अपराध इसलिए किया, या उसका अपमान इसलिए किया, छेड़खानी शूर्पणखा जो कर रही थी, तो भगवान शूर्पणखा को उधर ही मार सकते थे, परंतु भगवान ने देखा कि ये जाकर खर और दूषण को कंप्लेन करने वाली है, और वहां पर 14,000 राक्षस है जनस्थान, तो 14,000 राक्षस को एक साथ मारने का अवसर मिलने वाला है। तो इसलिए शूर्पणखा को राम और लक्ष्मण ने थोड़ा यहां वहां पिदाया, और फिर वो जब गुस्सा हुई तो जाकर खर दूषण को कंप्लेन की, और वो लोग फिर 14,000 अपने राक्षसों को लेकर आए, और फिर राम और लक्ष्मण को वहां पर जाना नहीं पड़ा, वो सब काम शूर्पणखा ने कर दिया, तो पूरी जाति को खत्म किया। फिर वो होने के बाद शूर्पणखा, भगवान जानते थे कि रावण को जाकर कंप्लेन करेगी, तो वो पूरी जाति को खत्म करने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान का ये नाम जनार्दन उसके लिए भी वो प्रसिद्ध है, उनकी पूरी जाति को भी खत्म करते हैं। और भगवान अपने भक्तों को श्रेय देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की चरण धूलि लेता हूं, क्योंकि मेरे शरीर में पूरा जगत है। तो मेरे शरीर में पूरा जगत है और उस पूरे संसार को शुद्ध करने के लिए मैं अपने भक्तों की धूलि लेता हूं। और भगवान यहां तक बोले हैं कि मेरे जो चरण कमल हैं, भगवान कहते हैं मेरे चरण कमलों में जो शक्ति है उद्धार करने की दूसरों को, वो कहां से प्राप्त हो रही, क्योंकि मेरे भक्त मेरे चरण कमल में हर समय रहते हैं। तो मेरे भक्त मेरे चरण कमल पर रहते हैं और उनकी शक्ति की वजह से मैं बद्ध जीवात्माओं का उद्धार कर सकता हूं। तो भगवान हर समय अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, इसलिए उनका नाम है जनार्दन। अब ये जो तीन नाम हैं, ये तीन नाम हमारे साधना भक्ति में हम कैसे समझें? गोविंद, ये जो नाम है भगवान का, ये उस संदर्भ से है, हमारी इंद्रियों को भगवान श्री गोविंद की इंद्रियों के संतुष्ट करने में लगाना है। तो हमारी इंद्रियों को जब हम श्री गोविंद की सेवा में लगाते हैं तब मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है। और क्या है, जिन्होंने शास्त्र को उस मधु असुर से लेकर फिर से ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से फिर हम सबको मिला। तो शास्त्र का ज्ञान हमें मिलता है जब हम अपनी इंद्रियों से श्री गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। और शास्त्र ज्ञान का निचोड़ क्या है, जीव दया, जनार्दन। तो इसलिए ये जो तीन भगवान के नाम इन श्लोकों में हैं, इसका अर्थ हम हमारे जीवन में इस प्रकार से समझ सकते हैं। भगवान की इंद्रिय संतुष्टि से शास्त्र का ज्ञान मिलता है, शास्त्र ज्ञान निचोड़ है प्रचार, जीव दया का अर्थ है प्रचार करना। और इसलिए जब किसी के अंदर शास्त्र का ज्ञान है परंतु हृदय में करुणा नहीं है, हरे कृष्ण, हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, कृपा नहीं है किसी के प्रति, माइक में लग गया लगता है, तो प्रेम और करुणा जब तक हृदय में नहीं आएगी तब तक वो शास्त्र ज्ञान किसी काम का नहीं। तो यदि उल्टा भी हम जाएं तो जीव दया यदि नहीं तो शास्त्र ज्ञान किसी काम का नहीं। और शास्त्र ज्ञान बिना इंद्रिय संयम के कुछ किसी काम का नहीं। तो इंद्रिय संयम का निचोड़ है शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का निचोड़ है जीव दया, ये कृपा। जैसे आज हम संगम नेर से आ रहे थे तो देखिए कि मुझे देखने मिल रहा था कि कैसे जीव दया तो छोड़ दीजिए, लोगों के अंदर किस प्रकार की आजकल धारणाएं होती हैं। तो हमारे सामने एक ट्रक था, काफी समय से वो ट्रक रास्ता नहीं दे रहा था जाने के लिए आगे। और ट्रक के पीछे बहुत कुछ फिलॉसफी लिखा रहता, बहुत फिलोसोफर्स रहते हैं ये ट्रक ड्राइवर, बहुत ऊंची ऊंची फिलोसफी बहुत लोग लिखते हैं। तो ये मैं नया कुछ देखा इसमें, देखिए कितना, जिसने भी कुछ लिखा हो किस धारणा से लिखा होगा। तो वो ट्रक वाला जगह नहीं दे रहा था आगे जाने के लिए, तो मैंने देखा वो ट्रक पे लिखा हुआ था मराठी में, तू असाच जड़त रहा। और उसके नीचे वो एक का मुंह और वो जीभ बाहर निकाले हुए। कि ऐसे जलते रहो पीछे मेरे। देखिए क्या
क्या भावना यदि भगवान का नाम लिखता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कम से कम जो बेचारा पढ़ रहा है उसका उद्धार होता। परंतु ये इस प्रकार की धारणा है, जलते रहो। तो यहां पर जो वास्तविक जीव दया है, कृपा है, उसके बारे में हमें इन तीन नामों से समझ में आता है। तो इसलिए अर्जुन भगवान को इन तीन नामों से पुकार रहे हैं और हमारी साधना भक्ति में हमें इस प्रकार से समझना है। और अगले श्लोक में अब अर्जुन आतताइयों के विषय में बता रहे हैं कि आतताइयों को मारने से या उनको नहीं मारने से क्या होता है। और इसकी चर्चा हम अगले बुधवार को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगले बुधवार को है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो इस वर्ष की गौर पूर्णिमा अगले बुधवार 11 तारीख को, तो आप लोग सब आमंत्रित हैं। गौर कथा प्रारंभ होगी रविवार से, आने वाले रविवार से गौर कथा, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और फिर जगन्नाथ मिश्रा उत्सव होगा गुरुवार को। तो ये 5 दिन की गौर कथा होगी इस वर्ष रविवार से प्रारंभ होते हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।